लौकिक विधियों को छोड़ करके और बाकी जो विधियां हमारे परमार्थ के अनुकूल हैं उसको तो ग्रहण कर लेंगे, और जो विधियां हमारे उसके अनुकूल नहीं है उसको छोड़ देंगे। जैसे देखिए कि कितनी उच्च विधि है, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा की पूजा हमारे सारे भारतवर्ष में होती है, होती है ना। रामचंद्र जी की पूजा होती है, नारायण की पूजा होती है, कहां नहीं है, सब जगह ये विधि है। किंतु एकांतिक रूप में जो ब्रज का भाव चाहता है, ब्रज के गोपियों का भाव चाहता है, उसके लिए जगन्नाथ की पूजा है कि नहीं है। द्वारकाधीश की रुक्मणी के साथ में रहने वाले ये लोगों के मस्तिष्क में नहीं जाता, ये विधि भी वहां पर अविधि हो जाती है उन लोगों के लिए नहीं जो गोपियों के भाव के अनुसार लेकर के, ब्रजवासियों के भावों को लेकर के कृष्ण की आराधना करना चाहते हैं। उनके लिए द्वारकाधीश की भी पूजा, राम की भी पूजा, लक्ष्मी नारायण की भी पूजा हो जाती है। कौन समझेगा इस चीज से। अपि तत्वा लक्ष्मी पति रति देवमने राधा कृष्ण परिचर्यामि सतम। ये कौन का, रघुनाथ दास गोस्वामी जी कर रहे हैं, क्योंकि एकांतिक वैसे है और सब लोगों के लिए पूजा है। करो खूब पूजा करो, राधा कृष्ण की पूजा करो, शंकर जी को वहां पर बैठा दो, नंदी जी को भी बैठा दो, दुर्गा गणेश जी को भी बैठा दो, राधा कृष्ण को भी ले लो, कृष्ण और बलदेव जी को भी बैठा दो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को है बैठा लो, कार्तिकेय जी को बैठा दो, शनिश्चर को भी बैठा दो, मंगल को भी बैठा दो, हनुमान जी को भी बैठा दो, और सबकी पूजा करो, लाख जन्म तक करते रहो, इस पूजा से कुछ नहीं होगा। एकनिष्ठ होकर के बढ़ो। जैसे बजरंग जी किसकी पूजा करते हैं, एकांतिक राजा, उनके लिए वही वज सबसे बड़ा है, तो उनको वहां से पूछता है। श्रुतियां, श्रुतियां मैंने क्या, वेद, वेदों ने गोपियों का रूप धारण करने के लिए और कृष्ण की सेवा करने के लिए लाखों कोटि वर्ष तपस्या की। वेद खुद ये वेद है ना, इसकी अधिष्ठात्री देवियां होती हैं, ये अक्षर नहीं है केवल, ये महामंत्र हरे कृष्ण, ये अक्षर नहीं केवल है, ये क्या अक्षर है, अक्षर ब्रह्म है, अर्थात भगवान का अक्षरी स्वरूप है, शाब्दिक रूप है, इसको इस रूप में लीजिए। हरि नाम जब लें समझे, जैसे हम राधा और कृष्ण को हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, हरे कृष्ण के भी चित्त को हरण करने वाली श्रीमती राधिका है, अपनी प्रेममयी सेवा से ऐसा समझो, उस समय निरस मत रहो। अच्छा एक बात, कहीं से एक माल कुआ मिला और हम इतने आदमी हैं तो हम अकेले गपा गप खा लें, सब लोगों को देखते हुए देख रहे हैं और मैं खा लें, उसमें आनंद अधिक है, या हमको आधी माल कुआ मिला उसमें से मैंने सबको बांट दिया और हमारे पल्ले भी उतना ही आया थोड़ा सा, कौन दोनों में आनंद फल हुआ, अपने आप सब लोगों के सामने में खा गया या सबको दे करके और थोड़ा सा अंत में मैंने लिया, कौन से में आनंद है, कह सकते हैं। मूर्ख लोगों के लिए वो खा लेगा अपने आप, जो महामूर्ख होगा, और जो बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा, बांटेगा कि नहीं, भले ही अपने पल्ले कुछ नहीं पड़े दूसरों को दिया, बस उसमें आनंद से भर गया। जो भक्ति को स्वयं, भक्ति को माल पुआ मानो, जो भक्ति अपने आप कर रहा है वो भी अच्छी बात है, आज जो भक्ति दूसरों को जो सबको थोड़ा थोड़ा देता है, दोनों में कौन सा अच्छा है। प्रहलाद महाराज जी क्या कह रहे हैं, तो दो बातें हैं, एक मालपुआ को दूसरे सबको बांट करके, या मिठाई या कोई चीज है मैया सबको दे देती है, अपने नहीं लेती है ना, सबको दे देगी। अभी भी दे दो तो अपने अंचल में बांध लेगी, घर में जाएगी, बच्चों को सबको जा जा सबको बांटेगी। ऐसे हमारा भी स्वभाव होना चाहिए, यदि हमें भक्ति है तो सबको थोड़ी थोड़ी देने की चेष्टा कर लेते। ये भी सतत बांट दिया भक्ति तो हमारे जिम्मे का रही, हमारे जिम्मे में वो पूर्ण भक्ति रही। संसार में जितनी भी चीजें हैं उसको बांटो, मालपुआ रुपया वैभव सब कुछ बांट दो तो वो बढ़ जाएगा, अपने जिम्मे नहीं पड़ेगा। और भक्ति को जितना ही अधिक दो तो क्या होगा, भक्ति अखंड रूप से और बढ़ती चली जाएगी देने पर भी। इसलिए इसको देने में कातरता नहीं होनी चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए, इस रूप में चलना चाहिए जो उसको भी कुछ भक्ति हो जाए। हमारे पास जो आए ऐसे प्रेम के साथ में व्यवहार करें, इस व्यक्ति को भी भक्ति हो जाए, उसको भी, इसकी भी विचारधारा भगवान के तरफ ले आ जाए। ऐसा नम्र कोमल मीठा मधुर व्यवहार करो, भगवान की कथाओं को सुनाओ, उसका संस्कार डालो। एक प्राचीन संस्कार होता है, एक आधुनिक संस्कार होता है। प्राचीन संस्कार से हमारी रुचि जन्म से ही धर्म है, किसी किसी को जन्म से ही धर्म से रुचि। महात्मा लोग क्या करते हैं, जिसकी पहले से संस्कार और रुचि है उनके रुचि को बढ़ा करके और आगे बढ़ा लिया, और जिनको एकदम है ही नहीं उसको क्या करेंगे, ये उनके घर में जाएंगे, वो मना करेगा तो भी इधर से उधर से जाएंगे। एक ऐसे ही संत थे, वो लोगों के घर पर जाकर के उनको कुछ संस्कार नए डालने की चेष्टा कर रहे हैं, और जाकर के नहीं सुनने पर भी हरे कृष्ण देखो हो हल्ला करते हुआ आया और गाली गलौज बकने लगा। एक बुढ़िया थी, वो साधु संत को रोज मना करती कि हमारे घर में मत आना, और वो क्या करते, वो जरूर उनके घर पर जाते। एक दिन बुढ़िया के घर में ये जब गए तो बुढ़िया अत्यंत बिगड़ गई, इधर देखे इधर, बुढ़िया अत्यंत बिगड़ी और वो घर लीप रही थी, और उस पोतने से, पोतना जानते हैं आजकल तो पोचना है नहीं, मट्टी गोबर लगी हुई, और उसे पोतने से मारा, उसे तुम मर नहीं जाता, और गाली गलौज बकने लगी। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, उसको उठा लिया और जमुना में मल मल करके धोया, खूब अच्छी तरह से धोया। किसी भक्त ने उनको घी दे दिया, घी में उसको डुबा करके बत्ती बनाई और ठाकुर जी को अर्पित कर दी। उससे क्या हुआ, उसका संस्कार उसका नया बना। अब दूसरे दिन गया तो वो बुढ़िया बड़ी रोने लगी कि हमने बहुत गलती की, उसका दिमाग ही बदल गया। इसलिए दूसरों को संस्कार डालने में बहुत कष्ट होता है, अपमान सहना पड़ता है, किंतु साधु लोग ऐसा करते हैं। इसलिए हमारे समीप में, हमारे परिवेश में जो लोग हैं, हमारी भक्ति और इससे बढ़ेगी यदि हम दूसरों को भी संस्कार देंगे, तो भगवान देखेंगे, गुरु देखेगा, ओ ये सबको तो ये संस्कार डाल रहा है, तो और प्रसन्न होकर के उसको भक्ति देंगे, उसकी भक्ति और बढ़ती जाएगी। इसलिए संत लोग जो हैं किसी के प्रति क्या कहते हैं, भेदभाव नहीं, उपेक्षा इत्यादि, उपेक्षा उसी को करते हैं, उनकी उपेक्षा भी कृपा है। यदि कोई भक्ति का घोर विरोधी है तब, और यदि विरोधी नहीं है तो उसको जैसे तैसे उसको नवीन संस्कार डाल करके भगवान की तरफ में ले जाने की चेष्टा कर, ये भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। इसको भी समझने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। हम लोग को क्या जरूरत है इधर उधर जाने की, वृंदावन में रह करके क्या हमको एक मुट्ठी चावल या रोटी नहीं मिल सकती मथुरा में? हम क्यों अपना अमूल्य सब नष्ट कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, यहां संपत्ति में जहां जाते हैं इतना वैभव, आप लोगों के पलंग पर इतने मोटे मोटे और उस पर हमको बैठाते हैं, ये प्रतिष्ठा दे रहे हैं, हमारी भक्ति गड़बड़ हो रही है, मैं समझ रहा हूं। तभी किस लिए ये हलाहल बीज पान कर रहा, इसको समझिए। किस लिए? आप लोगों के लिए। विदेशों में जहां एकदम संस्कार नहीं है, नए नए लोग जो शराब पीते हैं, गोमांस खाते हैं, उनके पास में हम लोग किस लिए जाते हैं? नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी जगाई मधाई जो शराब पी रहे हैं, उनके पास में क्यों गए? और लाखों आदमी नहीं पड़े थे, इसलिए गए, उसका संस्कार। ऐसी दया नहीं होगी किसी के हृदय में तो अभी वैष्णव नहीं हुआ, वैष्णवता की अभी कमी है, ऐसा समझना। अपना अपमान सह करके भी प्रहलाद महाराज जी को क्या जरूरत है? पिताजी का अपना असम्मान कभी किया? क्यों तुम हमें रोकते हो, किसे मारते हो, हमें बीज देते हो, जलाते हो, क्यों? एक दिन भी क्यों नहीं किया? यदि भक्ति करनी है तो ऐसे सही सुन होकर के दृढ़ता के साथ में भक्ति के तरफ में बढ़िए, आपका यह संसार भी सुखमय हो जाएगा, आपकी भक्ति भी बढ़ेगी और इस तरह से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तब एक विषय जानता हूं, वक्ता दो तरह के, उपदेशक और गुरु दो तरह के होते हैं। एक लड़का गुड़ खाता था और उसको बीमारी होती थी, फुंसिया उठती थी, तो पिता रोज कहते थे बेटा गुड़ मत खाओ, तो बेटा मानता नहीं। तो एक दिन अपने गुरु जी के पास में उस बच्चे को ले गए, गुरु जी से कहा जी गुरु जी ये गुड़ खाता है, इसके शरीर में ये सब हो गए हैं, तो आप कह दीजिए ये गुड़ न खाए, मैं से आज नहीं कहूंगा कल कहूंगा, कल ले आना। तो कल ले गया तो उन्होंने कहा बेटा तुम गुड़ मत खाना, खाएगा नहीं तो नहीं खाए, ठीक। और उस दिन से गुड़ खाना वो बच्चे ने छोड़ दिया। उस पिता ने पूछा जाकर के उनसे, जैसे आपने कल क्यों नहीं कहा जो आज कहा? भाई कल तक मैं गुड़ खाता था खुद ही, इसलिए बच्चे को कहता तो ये मानता नहीं। तो जो काम अपने आप जो नहीं करते हैं दूसरों को उपदेश करेंगे वो नहीं मानेगा। तो जो लोग भगवत भक्ति का आचरण खुद नहीं करते हैं, उसमें प्रतिष्ठित नहीं है, संसार में आसक्त हैं, पैसे के लिए उपदेश देते हैं, भागवत पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, बिचौलियों के घर में पैसे के लिए जाते हैं, दांत निपोड़ते हैं, उन लोगों के लाख उपदेश करने से भी भक्ति नहीं होगी। इसको कहते हैं सराग वक्ता। ऐसा गुरु हो कल्याण नहीं होगा, दो एक दिन के लिए बात आएगी, इसके बाद में हम गिर जाएंगे, स्थायी नहीं प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा थोड़ा सा भी यदि इतना कह दे जिसको संसार में आसक्ति नहीं है, स्वयं भजन करता है, भजन का बल जिसमें है, वो एक बार कह देगा तो उसकी बात मान लेंगे, फिर उसका पतन नहीं होगा, स्थायी रूप से प्रभाव होगा। इसलिए आजकल स्वयं आचरण नहीं करते उपदेश करने वाले घनेरे हैं, और इसके बाद में दो दिन के सुन करके फिर वो छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोगों को ऐसा ही उपदेशक होना चाहिए, गुरु भी हो तो ऐसा जो एक बार कहने से वो मान जाए। इसलिए हम लोगों को जब ही सुखी रहना है, जगत में शांति से रहना है, भगवान का भजन करना जरूरी है, उसके लिए एकादशी भी जरूरत है, और जो विधियां हैं भक्ति भजन करने के लिए उन विधियों को भी मानना चाहिए। विषयी लोगों का अन्न नहीं खाना चाहिए, यह निषेध भी मानना होगा। जो भजन नहीं करते हैं उनका संग अधिक नहीं, अपना संग यदि दृढ़ है तो दो, उसको भी कुएं से निकाल दो तब तक ठीक है, नहीं तो तुम भी उसको निकालने जाकर के कुएं में गिर जाओ, ऐसा संग देने की जरूरत नहीं। इस तरह से हम भजन करेंगे तो आज यही तक रहे, आप लोग इसी तरह से भजन करें और सुखी रहें। मैं अभी तो कल मथुरा मैं सवेरे जाऊंगा और वहां का काम थोड़ा सा देख करके, तो फिर मैं तीन चार दिन के लिए यहां आऊंगा। तो जिन जिन भागों में मैं नहीं गया, दक्षिण में अभी नहीं गया, पूर्व में नहीं गया, अभी पश्चिम में नहीं गया, हाँ तो वही बतला रहा, तो वहां पर एक एक दिन कर करके तब फिर पा करके पर्दे में रखना चाहिए। भक्ति भी दो प्रकार की है, एक है आंतरिक भक्ति राधा कृष्ण के प्रति प्रेम, और एक है जैसे नाम संकीर्तन है ये ऊपर से अभी साधारण परिस्थिति में, यदि नाम करते हैं तो क्या छिपा सकते हैं, हरे कृष्ण तो कहना ही चाहिए। वो यदि छिपा करके न कर सकते, चलते हुए यदि पशु पक्षी कीट पतंग घास पात भी ये सब सुने तो ठीक है, उनका भी कल्याण हो जाए, ये तो अब छिपाने की कोई जरूरत नहीं। किंतु आपको हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, ये मत दिखलाओ कि मैं बहुत बड़ा भारी भक्त हो गया, हमको कृष्ण लोग को देखते ही आंखों में आंसू आ गए, लोगों को देख करके तो फिर नाचने लगे, और जब कोई नहीं है तो कृष्ण कृष्ण भी नहीं होता, माला भी उतार करके हाथ से निकाल देते हैं, जैसे अभी लोग अधिक आदमी हैं हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और जब आदमी नहीं रहे तो क्या किया, खाओ पियो, ये तो गड़बड़ है, बल्कि इसको तो छिपा करके करना अच्छा है। अपने भक्ति को प्रकाश नहीं करना चाहिए, नहीं तो कपूर की भांति उड़ जाएगी, प्रतिष्ठा में बिगड़ जाएगी भक्ति, और भक्त लोग इसीलिए दिखला करके अपनी प्रेममयी भक्ति को प्रकाश नहीं कर छिपा कर करें। किंतु जो हरिनाम है इसको क्या छिपाएंगे, अब तिलक करना है इसको क्या छिपाएंगे, गले में माला है इसको कैसे छिपाएंगे, तो गले में माला ना दे तिलक ना करते तो ये भक्ति ही नष्ट हो जाएगी। इसके लिए जरूरी है यदि एक कहीं भी गवर्नमेंट में नौकरी करता है, पोस्ट ऑफिस में या पुलिस में या मिलिट्री में यदि काम करता है, तो ऊपर से नीचे तक उसके लिए जो ड्रेस होते हैं मिलिट्री का ग्रहण करना पड़े, चाहे वो 25,000 रुपया महीना पा रहा हो, चाहे वो आजकल तो 2-3 हजार रुपये से सिपाही एक है, यदि वो पहनता है, पहनेगा कि नहीं पहनेगा, नहीं पहनेगा पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी चली जाएगी। तो भगवान को भजन करने के लिए जो विधियां हैं जो कि इसके लिए उन्नतदायक है, ये गले में तुलसी माला नहीं पहनेंगे, तिलक नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अच्छा, उनको जो खाकी जो कपड़े जो दिए जाते हैं मिलिट्री वालों को, क्यों युद्ध करना होता है, जंगलों में युद्ध करते हैं, उसमें उनको छिपने में उससे मदद मिलती है, अपने को पहचान होता है, जो अपने ऊपर में कोई अपना ही विमान आक्रमण न कर दे, अपना अपना ड्रेस एक होता है, इसलिए उपयोगी होता है उस विषय में, इसलिए ग्रहण करते हैं। तो भक्ति करने में जो ड्रेस जो चीजें हैं, तिलक है, ये माला है, और जो चीजें हैं ये सब सहायक हैं, इसलिए उसको हम ग्रहण करते हैं। एक अमेरिका में या इंग्लैंड में हॉलैंड में देखा है, आवारे कुत्ते नहीं है उसे मार डालेंगे, बंदूक से साथ ही साथ मारेंगे या पीस दे देंगे, किंतु बेल्ट जिसके उसको कोई नहीं छू सकता, यदि कोई मार दे तो क्या करेगा, जुर्माना माने वो कोर्ट में साथ ही साथ केस करेगा, उसको हजारों 25-30 लाख रुपए उसके ऊपर में जुर्माना हो जाएंगे उस बेल्ट वाले को मारेगा। तो ये बेल्ट भगवान का है, इसको समझो, इसका मतलब हुआ कि हम भगवान के कुत्ते हैं, भगवान के प्यारे हैं, इसलिए इस चीजों को ग्रहण करना चाहिए, इसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। कुत्ते को बेल्ट देने में, अरे टाई बांधने में लज्जा नहीं आती है तुमको, धिकार है दूसरों का ये टाई बांध रहा है, और ये तुलसी का माला इतना पवित्र जो सोने से भी अधिक कीमती है और शक्तिदायक है, इसको पहनने में तुम्हें लज्जा आती है। इसलिए इन सब चीजों को विचार करते हुए अपनी भक्ति को, प्रेममयी भक्ति को छिपा करके रखो, और ये साधारण जो नाम इत्यादि है, तिलक है, इसे डरो मत समाज से डरने की जरूरत, समाज सारा यदि इस प्रकार का हो जाए, सत्य व्यवहार करे, तो हम समझते कि जेल की भी जरूरत नहीं होगी, पुलिस की भी जरूरत नहीं होगी, यदि भगवान से हम डरे, हम भगवान से नहीं डर रहे हैं इसलिए पुलिस की जरूरत होगी, तभी पुलिस क्या करेगा, रूल और रेगुलेशन से हम ये जितने अपराध हो रहे हैं हम उसको बंद कर देंगे, या ऐसा कभी संभव पर नहीं हो सकता है, वाजपेयी के हजार वाजपेयी भी आ जाए, यदि लोग धर्म का पालन थोड़ा थोड़ा करना लग जाए, अपने सब पथ पर चले, अपने आप ये सब चीजों का समन हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसी रूप में भक्ति करें, लो एक आरती कर, एक कीर्तन करके कहिए। दो प्रकार से शास्त्रों में उनका विचार किया गया, दुर्वासा ऋषि शंकर के अवतार हैं, उनको सब पता है, किंतु जगत में किसी चीज को प्रतिष्ठित करने के लिए विपरीत भाव से आने से लोगों को समझ में आती है कि देखो जो दुर्भाषा जैसे इतने बड़े व्यक्ति एकाशी नहीं करते थे और ऐसा होता था इसलिए इनकी ऐसी दुर्गति हुई, किंतु दुर्भाषा जी एकाशी भी करते थे, वो तो चाहे तो लाख वर्ष तक कुछ खाए ही नहीं, उनका तो जीवन ही भर एकादशी है, किंतु जगत की शिक्षा के लिए ऐसा करते हैं। और दूसरी तरफ में साधारण रूप में उनको केवल योगी मान लीजिए तो ये इससे पता चलता है दुर्भाषा जैसे योगी भी भक्ति के सामने कुछ नहीं है, बहुत सी शिक्षाएं इसमें है। इनको वामन देव को तीन पग भूमि की क्या आवश्यकता थी और उनको मांगने की जरूरत है बलि महाराज जी से, मांगने की जरूरत थी उनको, वो क्या करते किंतु किस लिए उन्होंने मांगा, जगत को शिक्षा देने की। बहुत सी शिक्षाएं हैं, समय पर इसका उत्तर देंगे। लो एक कीर्तन कीजिए इसके बाद व्यास।